نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وحاله ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وحاله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد، بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح دنیا کا کوئی کام بھی ہو، اس میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ پابندی ہے. جب انسان کسی کام پر پابندی اختیار کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں اس کو. تو جس طرح ہر کام کے اوپر انسان کو پابندی اختیار کرنی چاہیے، اسی طرح ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، جو فیل کیا جائے، اس کو انسان کو چاہیے کہ بھائی اس میں پابندی اختیار کرے. کیونکہ پابندی نہ اختیار کرنے سے وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اس سے اس کو فائدے حاصل نہیں ہوتے. اللہ کسی عمل کی توفیق انسان کو نصیب فرما دے تو اس کو چاہیے کہ بس اس کو مستقل طور پر اس کام کو کرے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو تو اس زیادہ سے اچھا ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے زندگی کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے، یعنی اس کے تو فوائد آپ جانتے ہیں، اس کے صدر ہیں. تو خوش نصیب انسانوں کو مل سکتی ایسی چیز اللہ کی توفیق سے اللہ نے دی ہے، مل جائے اگر آسان سے تو آدمی اس پہ، پھر کچھ چیز آسانی سے مل جائے تو پھر آدمی اس کی قدر ذرا کم ہی کرتا ہے، جب مشکل سے کوئی چیز ملے تو پھر آدمی اس کی بہت قدر کرتا ہے. یہی اللہ کا ذکر تھا جو لوگوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی مجاہدات کے ساتھ اس ذکر کو طے کیا. جس طرح ہم یہ نقشبندی سلسلے کے اسباق طے کرتے ہیں تو ہسٹری ہے، اٹھا کے دیکھیں آپ تصوف کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے جو گزرے ہیں جنہوں نے تصوف کو یا اس راستے کو اختیار کی ہے، تزکیے کو، تو کس قدر محنتیں انہوں نے کی اس پر. جتنی محنتیں کی اللہ پاک نے ان کو بھی اسی قدر نوازا اور فیض عطا فرمایا. کرتے تو ہم بھی یہ ذکر ہیں، کرتے ہوئے وہی ذکر تھے. فرق کیا ہے کہ ہمارے کرنے میں، ان کرنے میں یہ تھا کہ پہلی چیز تو یہ تھی انہوں نے قدر کی تھی اس چیز کی، قدر کی تھی اس کی کہ بھائی یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے. کس چیز سے قدر احساس کس نے دلایا قدر کا؟ جب انہوں نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھیں، اس کے فائدے دیکھی، اس کے فائدے دیکھے اور سنا لوگوں سے، تو پھر انہوں نے کہی تو بہت بڑی چیز ہے. اور جب وہ موتی ہیرا اس کی گود میں، جیسے میں کس سے سنتا رہا ہوں بچپن میں، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور یہ بہت بڑا قیمتی ہیرا ہوتا ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے، بچپن سے میرے ذہن میں یہ ٹرانسفر کرتا رہے کوئی چیز، اور پھر زندگی کے ایک حصے میں وہ جو چیز مل جائے بتائیں میرے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. جیسے عام دیکھ لیں آپ، لاٹری نکلتی ہے دنیا لوگوں کی، کہتے ہیں اتنے ملین لاٹری نکلی ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، آتے تصویریں آ جاتی ہیں، ٹی وی پہ آ جاتا ہے، لوگ تعریف بھی کرنے لگتے ہیں، بلکہ واہ یار کمال ہو، اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں نا، وہ ایک دفعہ کہتے ہیں یار بڑا ماشاء اللہ بڑا پیسہ مل گیا. اندازہ لگا کتنے آدمی اس کی قدر کرتے، لیکن بیچارہ गाड़ी से नहीं खरीदी उसी आदमी ने, बाहर निकला गाड़ी रोड पे थी, बस जोश में चला रहा था, लॉटरी निकली, एक्सीडेंट हुआ, पता चलिए दोनों मियाँ बीवी ख़त्म हो गए। वो लॉटरी कहाँ से देगी जो निकली थी, वो तकसीम हो गई थी, चलेगी अस्पतालों में उधर। तो ये कोई खुश होने वाली चीज़ तो नहीं ना भाई। तो खुश होने वाली चीज़ तो ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इशारा हो जाए, पता चला कि भाई अल्लाह के जिक्र की हमें तौफीक दे दी है, अल्लाह का जिक्र मिल गया है, फिर उन्होंने जिंदगी लगाई इसको अल्हम्दुलिल्लाह, उस चीज़ पर कदर की इसकी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने ही नवाजा उसको, इसी तरह अल्लाह ताला इनामात उनको ज़िंदगी में अता फरमाए, और आखिरत का तो फिर हिसाब ही क्या अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके नाम जब तक चलते हैं तो बताते हैं कि उनकी आखिरत भी कितनी अच्छी होगी, उनकी कब्रें भी कितनी अच्छी होंगी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है दोस्तों, मुझे भी और आपको भी, कि मैं किस ख़ास अमल की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि जिक्र की मजलिस है। बाकी और भी अमाल अल्लाह तौफीक दे तो उसको भी ऐसे ही करें, लेकिन ये जिक्र की मजलिस ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर इसकी कदर करें भाई, और कदर के लिए जो हादी से सुनाया जाए करें, सुना करें बार बार, ये जो थोड़ी बहुत हम बातें करते हैं इसको बार बार सुना करें, ताकि कदर महसूस हो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ने हमें ता फरमा दिया है। तो आसानी से मिल जाने पर ये ना समझो कि भाई चलो कुछ आम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, जिसका दारोमदार हमारी पूरी ज़िंदगी और आखिरत का दारोमदार एक चीज़ पर है। एक बात आपको थोड़ी सी छोटी सर्च कर रहा हूँ इस सिलसिले में, पूरे कुरान में जो जोड़ दिए अल्लाह पाक ने इंसान के बारे में, फरमाया कि वही शख्स कामयाब होगा जो कल्ब सलीम के साथ मेरे पास आएगा। ये नचोड़ है सारा मेरा आपका, क्या कहा है, कल्ब सलीम लेकर आएगा, यानी जो खास खालिस साफ शफाफ दिल के साथ मेरे पास आएगा, मैं उसके बाद फिर अमाल उसके देखूंगा, फिर देखूंगा नमाजें कहाँ हैं, कुरान कहाँ हैं, हज कहाँ हैं, उम्रे कहाँ हैं, इसकी फलां चीज़ कहाँ हैं। सबसे पहले चीज़ अल्लाह ताला कहता है मैं देखूंगा ना उसकी, इसके पास कल्ब सलीम है या नहीं है, एक चीज़ अल्लाह ताला कहता है। सारे अमालों का जो तोला जाएगा ना, और जो देखी जाएंगी चीज़ें बाद में, वो किस सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, बाकी जितनी भी हम जो करते हैं अमाल हमारे, सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाएगी, कल्ब सलीम। कुरान ने बताया जो अच्छा दिल लेके अल्लाह के पास चला गया, साफ सुथरा शफाफ अखलास से भरा हुआ दिल अल्लाह के सामने ले गया, तो लगेगा जब दिल ही अच्छा है तो अमाल भी अच्छे होंगे, चलो उसको जन्नत ही भेज दो। इसको कहते हैं बेहिसाब जन्नत में चले जाना, ये भी जिक्र के मामले में आता है। अल्लाह तो क्या नहीं पता, सब पता है वो, कोई हमारे क्या माल देखेगा, क्या कुछ देखेगा, वो कहेगा मैं जानता तो सब कुछ, जिसका दिल इतना प्यारा है तो उसकी नमाज कितनी प्यारी होगी, उसकी कुरान की तलावत कितनी प्यारी होगी, उसका सफ़ा मरवा पे चलना कितना खूबसूरत होगा, तवाफ कैसा तवाफ होगा उसका, किस तरह मुल्तज़िम में खड़ा होगा, जब उसने गिरिया की होगी उसका कमाल क्या होगा उस चीज़ का, वह तो हर वक्त उसके साथ था, तो सलीम उसका दिल बता रहा है इस चीज़ को, तो मैं मालूम को क्या तोलूँ वजन करूँ, तेरा हिसाब तो हो गया, चला जा जन्नत के आला दर्जे पर, ये है ना कलू सलीम। तो इसके लिए अमल क्या होता है, अल्लाह पाक ने उस अमल के मैं आपको एक मिसाल दी भी छोटी सी, सकीलतुल कल्ब जो है ना, सकीलतुल कल्ब, दिल को चमकाने वाला, दिल को सलीम बनाने वाला, वो दिल बनाने वाला जिसका अल्लाह ताला ने कहा कि वो दिल मेरे पास लेकर आना हर औरत मर्द के लिए, उसके लिए अल्लाह ने कौन सा बताया, सकीलतुल कल्ब के लिए बताया, अल्लाह का जिक्र है। अब इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितना बड़ा अमल अल्लाह पाक ने दिया है, कितना बड़ा हीरा आखरत का मोती दिया है, और हम इसको तवज्जो ना करें, फोर्स करना पड़े किसी आदमी को। ये तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आदमी इस कदर राजी और खुश हो जाए अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख करोड़ शुक्र मैं क्या बताऊँ, उसके हर वक्त ध्यान अल्लाह के जिक्र की तरफ होना चाहिए। तो जिक्र से एक कल्ब सलीम इंसान का बनता है, और फिर इंसान अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में कामयाब होना शुरू हो जाता है। भाई इसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जब अल्लाह पाक अमल हमें दे तो उस अमल के साथ क्या करे आदमी, इस्तकामत का अख्तियार करें। जिस कदर पाबंदी के साथ ये जिक्र हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पाबंदी से मिसाल ये है कि मैं किसी जगह काम करता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, दुकान है या कोई किसी ऑफिस में काम करता हूँ, तो पाबंदी का मतलब ये है वो अपनी सुबह शाम बना ले खुद ही, जाना 7 बजे ऑफिस जाना पड़ता है या 6 बजे रात को टैक्सी चलानी पड़ती है, तो सब मुकद्दस मिसाल ये है कि वो अपने पाबंदी के 2 वक्त बना ले कि इस वक्त मैं आऊँगा और उसके मुताबिक अपना टाइम फिक्स कर ले। मतलब वो कहता है जी मुझे इस वक्त मुझे आधा घंटा मिलता है, या औरत है कहती है मैं रोटी पकाती हूँ, सालन पकाती हूँ, बच्चों को लाती हूँ, सब अल्लाह को पता है सब कुछ होता है काम, लेकिन उसके लिए ये चीज़ माफ़ नहीं है, उसको भी जिक्र करना है। अलमुमिनात मुमिनात मुस्लिमीन वलमुस्लिमात वक़ानितान वलक़ानितात, ये कुरान नहीं कह रहा, जहाँ मर्द आ रहा है वहाँ औरत भी आ रही है। जब आखिर में यही कर ला पा, कसर से जिक्र करने वाले मर्द और कसर से जिक्र करने वाले, तो अल्लाह को पता ही औरतें काम करती हैं, 4-4, 5-5, 6-6 माशाल्लाह 12 बच्चे भी हो जाते हैं कभी, 10 बच्चे भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तदीस है कि जिस औरत के ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे अल्लाह ताला मतलब वो सबसे बेहतरीन औरत होगी जो मेरी उम्मत को बढ़ाएगी। नहीं कहते पिल्स दौर ख़त्म कर दो, अल्लाह कहता है बढ़ाओ मेरी उम्मत को, नबी की उम्मत बढ़े जितनी बढ़ेगी फ़क्र किया जाएगा। तो ये कोई रुकावट नहीं है, अल्लाह ने उसको भी जन्नत देनी है, तो उसके लिए भी यही है। मसरूफियात ज़िंदगी इंसान की चलती रहती है, बस ये है कि अपना वक्त निकाल ले, आधा घंटा निकाल ले, आधा घंटा नहीं 15 मिनट निकाल ले, 15 मिनट 10 मिनट निकाल ले, 10 मिनट तो कितना निकाल ले 5 मिनट निकाल ले, 5 मिनट नहीं तो 3 दफ़ा कह बैठ के अल्लाह अल्लाह कह दे, ये पाबंदी हो जाती है। अल्लाह का नाम है, पता है अल्लाह को भाई इसके पास 3 मिनट हैं, इसने ऑफिस जाना है, इसने भागना है और इसे ये काम करना है, यानी सुस्ती नहीं की वजह से, नहीं मजबूरी की वजह से बैठ जाए, बस दुआ करे चला जाए, पाबंदी हो गई। अल्लाह ने कहा ना कि मुझे ज़्यादा तादाद ज़्यादा पसंद नहीं है बल्कि क्या पसंद है, हम जाते हैं और बताओ जी और कर सकते नहीं, कर सकते ही नहीं, हिम्मत है नहीं, टाइम है नहीं, तो और मांग जाते, और में क्या होता है कि एक दिन शौक से पूरा कर लिया अगले दिन फिर पीछे रिवर्स मारना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये महफिल हैं जो हमारे अल्लाह पाक हमसे कराता है, मजलिस है, अल्लाह के फजल से जितनी मजलिस होती हैं हमारे सुबह शाम जिक्र मस्जिद में, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है, तो हफ्ते में कितने हो गई 14 मजलिस हो गई, कितनी बड़ी बात है 14 मजालिस अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में इंसान को मिल जाए तो कितनी बड़ी आप बताएं खुशकिस्मती इस मसरूफ ज़माने में और इस दुनिया के अंदर जहाँ बैठे इस मुल्क के अंदर सुबह और शाम 14 मजालिस अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाए, अल्लाह कितनी बड़ी नेमत है। और जो शख्स इस पे पाबंदी अख्तियार कर ले क्या होगा इंसान को मुझे बताए, थोड़ी सी बात है किस तरह वक्त गुजर गया हमारा, गुजर रहा है क्या ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं पकड़ सकते, ये 14 जो मजलिसें हैं ये हमें खाली छोड़ देंगे कब्र में या क़यामत में खाली छोड़ देंगे। अल्लाह का जिक्र और पाबंदी 14 मजलिसें मस्जिद के अंदर मुनक़द हो रही हैं, उसमें हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 1.5 घंटा, तो अल्लाह के वली और कौन होते हैं, सींग लगे होते हैं इंसानों के, क्या मुकाम हो जाता है इंसान को मुझे बताया, कितना करम हो जाता है, सही है ना। तो अब यह है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब 14 के अलावा अल्लाह ने और भी फजल फरमा दी, अल्लाह कहता है शुक्र तुम लाजी, देखिए मिसाल मिलती है, हमने 14 अख्तियार की, अल्लाह पाक ने 14 नहीं, अल्लाह ने मस्जिदों में ऐलान करना शुरू करा, हम जैसे नकार आदमी हम कहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अब इतनी बढ़ गई, अब ये भी हो गया मामला साथ मंगल ये बुध ये फलां ये फलां ये 2 रह गई, वो भी हाजी साहब कोशिश कर रहे हैं हमारे कहीं ना कहीं अटकाने की, लगे हैं बेचारे तो कहीं ना कहीं फिर अटक जाएंगे। बहरहाल ये है कि अब ये है कह रहा हूँ आपसे, आप सब भी हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं, वो कौन सी किश्ती है, अल्लाह के जिक्र की है, अब उसमें क्या है कि भाई इस्तकामत होनी चाहिए। अब क्या है कि जो आदमी बिल्कुल फारिग है, रिटायर है बेचारा मेरी तरह, बेकार है या बीमार है, बीमार भी जो है बीमार बिस्तर भी पड़ेगा, यहाँ के बैठ जाए कुर्सी पे तो क्या फर्क पड़ता है उसको, घर भी बैठेगा ना बीमार हूँ, बीमार तो घर पड़ा है, अगर इतनी हिम्मत है तो मस्जिद में आ जा, यहीं बैठा रहे आराम से, तुझे क्या करना है, बीमार के लिए ऐसी तो कोई चीज़ नहीं, हाँ ऐसी अल्लाह ना अगर ऐसी बीमारी होगी उठ नहीं सकता या बहुत ही वॉमिटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा काम ख़राब है फिर तो ठीक है, लेकिन ये छोटी मोटी बीमारी ऐसी है कि इसमें चल सकता हो, कोई बीमार नहीं, हिल सकता हो चल सकता हो सब कुछ कर सकता हो, आ जाए जिस तरह बैठ सकता है बैठ जाए जितनी देर, क्योंकि ये तो नेमत है जन्नत है। तो भाई कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम अपना प्रोग्राम बना लें कि भाई ये सारे जो मजालिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये اس پہ ہمیں پابندی اختیار کرنی ہے, سب مجلس میں جانا ہے, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, کون سے جا سکتے ہیں؟ صبح تو آ سکتے ہیں, ہم شام آ سکتے ہیں, بھائی ہم الفلا میں جا سکتے ہیں, ہم ذکریہ میں جا سکتے ہیں, جس میں جا سکتے ہوں, کام وغیرہ نہ ہو رکتا ہو دو میں آ جائے, ان دو پہ پابندی اختیار کر لیں. تین ملتی ہیں, تین پہ پابندی اختیار کر لیں. دیکھتا ہوں کچھ حضرات ماشاء اللہ ایک دو مجلس میں آتے ہیں لیکن پابندی سے آتے ہیں, کام کی وجہ سے نہیں آ سکتے میں باقی مجلس میں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے کہ بھائی دو تین انہوں نے ذکر کی مجلس پکڑی ہیں لیکن پابندی اختیار کی ہے ان اس پر. الحمد للہ, مبارکباد, اللہ بڑا کریں گے آ جاتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ دو دن میرے پاس ہیں, یہ تین دن میرے پاس ہیں, تو پہنچ جاتے ہیں. جن کے پاس پورا ہفتہ ہو تو ان کو خوش ہونا چاہیے, بھائی ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے, آج الفلاں میں نماز پڑھ رہے ہیں, کل فلاں جگہ پڑھیں گے. اس میں یہ تو ٹیسٹ چینج ہوتا ہے نا مسجدوں کا بھی, کبھی کسی امام کی کلاس سن رہے ہیں, کبھی کسی امام کی کلاس سن رہے ہیں, اور پھر ماحول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ. کہیں ہیٹ زیادہ ہے اس طرح, ماشاء اللہ مکی مسجد میں ہوتی ہے تو وہاں تو کپڑے آستے تو سارے اتارنے پڑتے ہیں, اس میں بنیان ہی رہ جاتی ہے خالی. مکی مسجد کل آ رہی ہے نا, اپنی بنیان پہن کے آئے بھائی, کچھ وہاں بہت ماشاء اللہ سردی لگتی ہے شاید لوگ, تو یہ ماحول ہے. آہستہ آہستہ میں تو اتارنا شروع کر دیتا ہوں چیزیں ساری, یہاں شروع ہوتا ہے سب کچھ. تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہر ایٹماسفیئر سے آدمی گزر رہے اللہ کے فضل سے, یہ بھی اچھی چیز ہے. اس کے بعد یہ کہ الحمد للہ پابندی ہمارے ذکر پر ہو گئی, لیکن یہ اتنا بڑا فیل ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مستقل پابندی. خاص طور پہ جو ماشاء اللہ ہمارے ساتھی استف رہنے والے ہیں ذکر کے نزدیک, ان کے تو صبح شام کی پابندی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے نہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے, وہ اتنا نقصان کر رہا ہے اپنا, اتنا نقصان کر رہا ہے, یقین کرو کہ اس کو تصور نہیں کیا. ایسا رونا آتا ہے کہ جو صبح کے وقت آتا نہیں اور ذکر میں نہیں بیٹھتا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کا دن کیسے گزرتا ہوگا؟ آپ سوچیں کیسے دن انسان کا گزرتا ہوگا, کس قدر اس نے اپنا نقصان صبح سے شروع کر دیا, گھاٹے میں کر لیا سارا سودا, اس نے تباہ کر لیا اپنا. جا سکتا تھا لیکن تھوڑے سونے کے چکر میں, اتنے چکر میں, اس چکر میں نہیں آ سکا. میرے بھائی یہ بھی پابندی ہے کہ آپ اگر پورے ذکر میں نہیں بیٹھ سکتے, آدھے میں بیٹھ جائیں, آدھے میں نہیں بیٹھ سکتے چلو پانچ ہی منٹ بیٹھ جائیں, تین کلمات میں شامل ہو جائیں تو کم از کم ذکر میں شامل ہو گیا, تین میں شامل ہو کے جائیں پھر جو کرنا ہے آپ نے کر لیں, لیکن یہ تو کم از کم شامل تو ہوئے, بیٹھ تو گئے ذکر کے اندر. تو انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ذکر پہ پابندی کریں اور جو وظائف آپ تو دیے گئے ہیں اس پہ پابندی سے اختیار کریں. ایک چیز کو بالکل یاد رکھیں الحمدللہ کہ ذکر ہر حالت میں فائدہ دے گا ہمیں, بس یاد رکھنا, ہر حالت میں فائدہ, جس حالت میں ہو, بڑے بڑے لوگوں کا جس حالت میں آپ ذکر کر رہے ہیں, آنکھ بند ہیں لیکن پابندی کی خاطر دل بھی نہیں کر رہا, طبیعت بھی نہیں مان رہی, واحد یہ عمل ایسا ہے کس کی پابندی کے لیے آنکھیں بند کرتے کہ آپ نے کہا اپنے معمولے پورے کر لوں, یہ کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ جی یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہمیں کیا کر رہے ہیں, نہیں کچھ نہیں, اللہ کو سب پتہ ہے, یہ میرا نام لے رہا ہے, یہ میرے لیے بیٹھا ہے, سب پتہ ہے اللہ کہ بندہ میرے لیے بیٹھا ہے, لیکن اس وقت کیا ہے, بدہوش ہے اپنے بیچارے, بشیت کے تقاضے میں محب ہے, تھکا ہے, پریشان ہے, کچھ نہیں, لیکن یہ میری وجہ سے اپنا میرے نام کو لے رہا ہے تاکہ میرا حاضری لگ جائے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں, بس حاضری لگ گئی. تو اللہ تو قدر کرتا ہے انسان کی, ہم کہاں ہونا, ہم کہاں کیسی کسی اہتمام کے ساتھ بھی آپ ذکر کر لیں پھر بھی ہمارا ذکر ایسا نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو سنیں, لیکن اللہ نے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے اس کی, آپ یہ دیکھیں ذکر کی, کسی شرط کے بغیر اللہ نے کہہ دیا فذکرنی اذکرک, بس تو ذکر کر میں بھی تیرا ذکر کروں, کتنی بڑی چھوٹ دے دی. اب یہ نہیں کہا کہ ہوش میں کر بالکل مجھے پابندی ہے اور تیرا دیکھنا ہوگا اور تجھے سننا ہوگا اور تیرا دل بھی کرے زبان بھی کرے اور خبردار تو نے یہ کیا آنکھ نہیں بند کی وضو ہونا چاہیے, نہیں کہ تو یاد کر رہا ہے میں بھی تجھے یاد کر, اس سے بڑی چھوٹ کیا ملے گی, کریں گے نا انشاءاللہ. پابندی اختیار کریں, پابندی میں نے آپ کو تین دفعہ, لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے دن میں, صبح اور شام اپنے وظائف کو پورا کریں, انشاءاللہ یہ ذکر جو ہے نا ہمیں پار کر دے. ابھی یہ ریسنٹ آپ کو بات بتا رہے ہیں, ایک سب بہت نیک انسان کا بھی انتقال ہوا, دیکھیں کہاں کام آتا ہے اللہ کا ذکر, بڑے بڑے نیک معروف آدمی تھے ہمارے دار العلوم کے, جن کا بھی انتقال ہوا, معروف ہر آدمی ان کو جانتا ہے, بہت متقی اچھے انسان تھے, قرآن بہت پڑھتے تھے, اللہ کا بہت قرآن پڑھتے, بہت शागिर्द बड़े हैं उनको पढ़ाया, इंतकाल हुआ बेचारों को अभी, तो उनके दामाद मुझे बता रहे थे के बारे में कि भाई कसर से जिक्र कर रहे थे अस्पताल में लेटे हुए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो जिस तरह उन्होंने मुझे बताया। अब क्या हुआ, कहते हैं हुआ ये कि जनाब मरने से बस चंद लम्हात पहले ये वक्त आएगा, मैं बता रहा हूँ आप गौर से सुनने मेरी, और ये मैं पहला आदमी नहीं देख रहा, मैं बहुत सी बातें सुनी है इस सिलसिले में। अल्लाह मुझे तखबत शैतान अंदर मौत, ये मसरूरत है नबी पाकों की, लक्न हजत अंदर मौत, ये दो दुआएं हैं नबी पाकों की जो काम हो बहुत बताती हैं क्या होगा। तो साथ उनके बेटे थे या और थे, कहते बिल्कुल मरने के करीब थे और अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, देखें आप अल्लाह का जाकिर कितनी बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने जब अपना जिक्र करते करते कहा हाथ से कहते हट हट हट, और जिक्र शुरू कर दिया हट, तीन चार दफा किया बड़े गुस्से के साथ, थे भी जलाली तबीयत के आदमी जरा हट हट हट, और फिर जिक्र ऊँचा ऊँचा शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि ये किसको हटा रहे हैं, तो कोई भी नहीं है, तो मैं बैठा हूँ। कहते नहीं नहीं अभी शैतान आया था मुझे वर्गला रहा था, खत्म शैतान दलम होती, आखिर का उसका हमला होता है शैतान का बड़ा ज़बरदस्त, सब कुछ रह जाता है इंसान का, वो है मामला। इस टाइम से इंसान निकल गया पूरे हमले के साथ, उस वक्त शैतान इंसान पे हमला करता है। जैसे मुझे एक बेचारी बूढ़ी औरत याद आती है, जिसका मैंने पहले ही वाक़ा आपने सुनाया, रोज बुला लेती थी सास से एक औरत को आलमा को, और कहती थी मुझे 5-10 मिनट रोज दे दिया करो, बूढ़ी औरत थी जी भी जानने वाली बात बता रहा हूँ, क्या क्या करना, कहते बेटा बस इतना कर वो जो 3 कलमे हैं ना वो मुझे ज़्यादा याद करा, मैं बोलती रहूँगा तू बताती रहा मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा पहला जब वो मुझसे ये पूछेंगे भाई तेरा रब कौन है तो मैं क्या जवाब दूँ, रटती थी कि मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं कब्र में जाऊँगा ताकि मुझे भूल ना जाऊँ, सुभान अल्लाह, कैसे कहते हैं सवाल भूल ना जाऊँ, इतनी यानी यकीन देखिए कितना उनको अल्लाह की तरफ और अपनी मौत का यकीन होता है। तो कारी साहब ने कहा पक 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 गए उस हाथ से, ये शैतान था जो मुझे वर्गला रहा था और मेरे ईमान पे डाका मारने वाला था। तो फिर जिक्र शुरू कर दिया उन्होंने, जिक्र शुरू कर तो भाग गया, उसी के साथ उनके ऊपरवास कर सक्सेसफुल कामयाब चले गया। अगर हम भाई जिक्र ही नहीं करेंगे फिर तो वही चीज़ें आएंगी बातें, शैतान तो पता शैतान ही है, पता है क्या कान है फूंक मार दे हम एकदम बदल जाए बगैर ईमान के चले जाए, क्यों अल्लाह ताला कह सकता है, इसलिए कि तुमने उसकी तैयारी ही नहीं की, तुमने कभी जिक्र की तवज्जो ही नहीं दी, तुम तो बस जिक्र ये जिक्र बैठे करें ठीक है बड़े अच्छे माजा कर लो, इतना मामूली चीज़ समझिए उसको, इतनी मामूली चीज़ है कि पास से गुजर जाओ देख तारीफें करते हुए जी ये हाँ जिक्र मस्जिद सो रही है ठीक है बड़े अच्छे काम करने वाले, ऐसा काम नहीं है भाई, ये देख रहे हैं मैंने आपको मिसाल भी जिसने दिया, कई मिसालें मेरे पास इस चीज़ की आखिरी वक्त, तभी तो नबी पंख होने अजी तखब्बत शैतान दिल मौत तब कहीं हजत दिल मौत, मौत के वक्त जो है ये दुआएं हैं अल्लाह नबी पंख की, अल्लाह तला से हो कि शैतान जो है मुझे खपत ना डाल दे मेरे पे आखिर, शैतान जिन आप इंसान होशमंद होता है तो जिन क्या कर देता है उसको पागल कर देता, नहीं करता ये कहते हैं जिन चढ़ गया, कहते हैं जिन चढ़ गया क्या हरकतें करता है बेचारा वो औरत मर्द, जिन क्या कुछ करता है उसके साथ अजीब अजीब हरकतें कराते हैं। तो मुझे बताएं आदि कमज़ोर बीमार पड़ा हुआ उस वक्त जीन आ जाए फिर क्या करेगा, कुछ कर सकेगा, लेकिन अगर जिक्र किया हो अल्लाह के फजल से और जाकिर हो और इस नीयत से किया होगा ये मैं अपनी आखिरत का सरमाया बना रहा हूँ, इस मौत के वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जब मैं इसी अस्पताल में लेटूं जैसे उनकी बात की हर एक लेटने मैं लेटूं और मेरा आखिरी वक्त हो और शैतान ने आना ही होता है डेफिनेटली, मैं बहुत से वाक़े देखे ज़रूर आता है, वो अपने ग्राहक को पकड़ता है, ये नहीं कि वो एक के साथ हो गया नहीं, हर एक के बाज तो जहर हो जाते हैं बेचारे बता देते हैं और बाज जो होते हैं वो चले जाते हैं नहीं बता सकते, लेकिन हर एक साथ ये होता है उसने आके अपनी पूरी जमात के साथ तभी तो कहते हैं जिस इंसान मरने लगे तो उसको कलमा तलकीन करो सूरह यासीन पढ़ो, सब कहते हैं ना कारण है, तो आप ये पढ़ रहे हो शैतान अपने काम कर रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है कि जो आदमी खुद जिसके लिए की जा रहा हो उसका झुकाव किधर जा रहा है, उसका तैयारी क्या थी, उसने अल्लाह का कहना क्यों नहीं माना, क्यों नहीं समझा जिक्र की अहमियत को, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं उस हदीस को पता चला कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से निकाल दिया वो जन्नत में चला गया। वो वक्त, उस वक्त हमारी ज़बान से सिर्फ क्या निकले, कलमा निकले। असल वक्त वो है। अब हम बैठे हैं तो ठीक ठाक बैठे हैं ना, पता है बदमाशी भी है, जो कुछ भी ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं, बस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त जब आएगा जब होश ठिकाने उड़ चुके होंगे और उस वक्त आके जिन पकड़ ले, उस वक्त कोई आमिल भी नहीं आ सकता, जीन आके खप्त कर ले, उसके दिमाग पे छा जाए, लेकिन अल्लाह के जिक्र का नूर इतना बड़ा होता है कि वो जीन आ ही नहीं सकता उस वक्त, आ ही नहीं सकता। नूर हल बताया गया है कि नूर जो है वो हल्का बना लेता है उस आदमी, हल्का समझते हैं ना, सराउंडिंग हो जाता है उसके इर्द गिर्द, भगाता है शैतानों को नूर, इस तरह भगाता है उसको। अब देख लें कितनी बड़ी चीज है अल्लाह के जिक्र की, लेकिन वो जिक्र होगा जिस पर पाबंदी की जाएगी। हाथ से वादा कर लें पक्का कि इंशाल्लाह जिक्र को नहीं छोड़ना, याद रखना, और जिक्र की मजालिस में बिल्कुल पाबंदी से पहुंचे और उसको इतनी अहमियत दें कि उससे बड़ी उस पर कोई चीज आपके सामने हो ही ना। ये सोचते हो कि ये जो मजलिस है ये मेरे हो सकता है इस मजलिस की वजह से मेरे अंदर वो जिक्र की कैफियत पैदा हो जाए कि जब मैं मरने लगूं तो ये कलमा मेरे जबान पर जारी हो जाए। बस हो सकता है सुबह मैंने जिक्र किया हो, देखिए मिसाल किया आपने किया, पूरा दिन गुजरा नहीं गुजरा, उसमें कुछ शैतान ने गुनाह करा दिया हो हमारे से, ऐसा गुनाह करा दिया हो कि ईमान ही हिला हो हमारा अंदर से, साफ कर दियो, हमें क्या पता क्या गुनाह करा दिया, हम पता नहीं, बताऊं आपको एक किबर, किबर ऐसे गुनाह है जिसके बारे के अंदर कहा गया है वाज़ह तौर पर कि जिसके पास किबर तकब्बुर राय के बराबर भी होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या गारंटी सुबह से शाम तक आपने कोई किबर नहीं मारा हो, मुझे बताएं, आदमी है ना, किसने किबर ना किया हो तो क्या चीज है। अब क्या है कि सुबह आपने जिक्र किया ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कमा लिया, शाम तक हमसे किबर हो गया तो नाम तो फारिग हो गया ना हमारा जन्नत से, हिसाब का तो खराब हो गया ना, तो एकदम अल्लाह ने शाम की मजलिस दे दी, उस पाबंदी की वजह से मजलिस में आ गए, फिर आप जन्नत के अंदर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, कितना फर्क हो गया। ये है पाबंदी से मुराद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मजालिस मिल सके ये सोच के कि मैं सुबह तो जिक्र किया था अब शाम को क्या जाना, कभी नहीं कहना शाम तक तो मुझसे गुनाह हुए हैं बहुत से, जाके शाम को थोड़ी देर जिक्र में बैठ जाऊं फिर उस मजलिस में चले जाऊं, क्योंकि उसके बाद तो ऐलान हो नहीं है कि जो भी मजलिस में आया उसको हमने बख्श दिया, ये तो ऐलान करना ही है अल्लाह के फरिश्तों ने। जैसे हम जिक्र खत्म करेंगे मजलिस जिसमें जमा होते हैं लोग, और जिक्र मजलिस खत्म हुई और गए तो फरिश्ते खड़े होते हैं दरवाजों में, मोहरें लग रही होती हैं जन्नती 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 जन्नती, ये तो हो रहा था। तो ये कितनी बड़ी फायदा है, अब बताएं आपका यहाँ आना अच्छा फायदा मंद हुआ ही ना, अल्लाह ताला से तो दुआ करें अल्लाह पाक ता मर गए तम जब तक हमारी जान जाए हमें अल्लाह पाक अपने जिक्र के साथ शामिल रखे और जिक्र से मोहब्बत रखे और जिक्र की कदर करते रहे, और जब बिस्तर पे लेटे हों और हम जिक्र कर रहे हों तो हम बेफिक्र होकर हंसते हुए जन्नत में चले जाएंगे इंशाल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं होती फिर इंशाल्लाह, तैयारी पूरी होती इंसान की, कोई गम नहीं होता, ना खौफ नहीं बोले आसनून, किसी किस्म का खौफ और गम इंसान को नहीं होता, ना दुकानों का गम ना कारोबार का गम ना बीवियों का ना बच्चों, आराम से पढ़ो तो पता है हमें आप जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, निकल जाऊँ अल्लाह का जिक्र करते निकल जाते, तो भाई जिक्र करें अल्लाह का।